أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. کلام جدید کے اندر ہم نے ایک اہم ترین بحث کا آغاز کیا کہ جو آج کے معاشرے کی ضرورت ہے اور اس مسئلے میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان کے جوابات ہمارے جوان جو ہے وہ طلب کرنا چاہتے ہیں، اور اس مسئلے کی اہمیت کے مد نظر اس کو یہاں پر ہم نے مقدم کیا، اور منطقی طور پر بھی مقدم تھی لیکن جس انداز میں ہم نے آغاز کیا ہے اس بحث کا وہ ضرورت کے تحت کیا ہے، اور وہ ہے بحث الحاد ایتھیزم. الحاد کی تعریف آپ کی خدمت میں بیان کر دی، الحاد کی جو مختلف اقسام تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دی، الحاد کی جو مختلف حالتیں ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں تفصیل کے ساتھ جو ہیں وہ بیان کر دی تھی. اگر میں ایک جملے میں خلاصہ کرنا چاہوں کہ الحاد کسے کہتے ہیں، ایتھیزم کسے کہتے ہیں، وہ ہے خداوند متعال کے وجود پر اعتقاد کو ترک کر دینا. اب یہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ یہ کہ انسان یقینی طور پر آ کر نظریہ اختیار کر دیتا ہے کہ خدا وجود نہیں رکھتا، یعنی خدا کے وجود کی نفی کر دیتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ یہ ادعا کرتا ہے آ کر کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، جس کو ایگنوسٹیسزم کہا جاتا ہے. کہ اگر اس کو ترجمہ کریں مثلا نہ جاننا، یعنی مجھے نہیں پتا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ پتا ہے، کہتا ہے نہیں پتا مجھے اس بارے میں. تو اس ایگنوسٹیسزم کی بھی دو حالتیں جو ہیں وہ دو قسمیں بیان کی تھی. ایک بیان کی تھی کہ پازیٹیو ایگنوسٹیسزم ہے کہ جس کو کہا تھا کہ جو لا ادری نہیں جانتا ایجابی ہے، کہ اس کے اندر یہ بندہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اصل جو نظریہ ہے وہ ایگنوسٹیسزم کا ہے. یعنی نہ ایتھیزم درست ہے کہ جو صریح طور پر خدا کا انکار کرتا ہے، اور نہ ہی جو صریح طور پر خدا کا اثبات کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، بلکہ نظریہ یہ ٹھیک ہے ایگنوسٹیسزم کا، نہیں جانتے. اس وجہ سے اس کو پازیٹیو کہا گیا ہے، ایجابی حالت کہی گئی ہے کہ یہ موقف بنا رہا ہے، اپنا نظریہ دے رہا ہے دو نظریوں کے مقابل میں. اور ایک ہم نے نیگیٹو ایگنوسٹیسزم جو ہے وہ بیان کی تھی، یعنی سلبی حالت جو پائی جاتی ہے، وہ کوئی موقف سامنے اختیار نہیں کرتا، نظریہ کوئی ثابت نہیں کر رہا ہوتا، وہ بس یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے دونوں طرف کے دلائل دیکھے ہیں لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، دونوں کے دلائل میرے سامنے جو ہے نا مساوی ہیں ایک قسم کے، مثال کے طور پہ، اور مجھے نہیں پتا خدا وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. یہ ایک سلبی حالت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو عام معنی میں الحاد جب کہا جاتا ہے، ایتھیزم جب کہا جاتا ہے، یا ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، تو ان دونوں حالتوں کو مراد لیا جاتا ہے. معمولاً بعض اوقات فقط خدا کے صریح طور پر وجود کے انکار کرنے والے کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، یا اس مکتب فکر کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، لیکن ایک مرتبہ عام معنی میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ یہ دونوں صورتیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی ہیں. تیسری قسم جو آپ کی خدمت میں بیان کی تھی، اس کو بھی ہم تقریباً جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک مزید اس کے دائرے کو اگر پھیلایا جائے تو اس کو بھی شامل ہو جائے گا. وہ ہے کہ خدا کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے، لیکن خدا اس نظام ہستی کے اندر یا انسانی زندگی کے اندر کوئی تاثیر رکھتا ہے، اس کی نفی کر دیتا ہے. جس کو اگر ہم کہیں کہ قریب قریب ہے کس کے، یہ ڈیئزم کے. ڈیئزم کیا کہتی ہے؟ مختلف تعریفیں ڈیئزم کی گئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک نظریہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، ایک حقیقت تک پہنچنا چاہتے ہیں، خدا کا آپ مثلا جو ہے وہ वजूद साबित करते हैं, लेकिन उस इस फिक्र के अंदर वही और वही की तरह बाद जो मफाहीम जो मावराए तबीयत हैं उनके ऊपर इनका कोई एतमाद व तकिया नहीं होता। डेइज्म जो है वो ये नजरिया देता है, यानी ये खुदा के वजूद को मानते लेकिन किसी किस्म की कोई तासीर नहीं मानते। तो अगर मजीद इसके दायरे को देखा जाए और बाज किताबों में आप देखेंगे कि इस तीसरी हालत को भी इल्हाद के मौजू में लेकर आते हैं, कहते हैं ये भी एथीज्म है, एथीज्म की एक किस्म है। अगरचे एथीज्म की जो मसलन आप देखें जो जो आप कह लें कि शदीद किस्म है वो है कि जो सरी तौर पर खुदा का इनकार कर रहा है, जो उससे थोड़ा सा नीचे वाला मरहला है वो है कि जो एग्नोस्टिसिस्ट है, ठीक है, या एग्नोस्टिसिज्म के मकतब का कायल है, जो शक के अंदर मुबतला है, नहीं जानते का वो नारा लगाता है, और उससे भी नीचे का जो मरहला आता है वो ये है कि खुदा की तासीर की नफी करना या पूरी कायनात के अंदर या इंसान की जिंदगी के अंदर। दुरुस्त है, ये हमारा मुख्तसर सा एक तआरुफ था इल्हाद की तारीफ, उसकी जो अकसाम और इन चीजों को पिछले दर्स में आपकी खिदमत में तफसील से बयान किया है। आज जो एक इस्तेलाह आपकी खिदमत में बयान करनी है और जरूरी है इस इस्तेलाह को बयान करना, वो है मॉडर्न एथिज्म, जदीद इल्हाद। मॉडर्न एथिज्म और एथिज्म के दरमियान क्या फर्क है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। जदीद इल्हाद और इल्हाद में कोई बड़ा और बुनियादी फर्क नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी ये जो जदीद इल्हाद है ये जो पहले इल्हाद मौजूद था उससे एक निस्बतन फर्क पाया जाता है, इसी वजह से इसको जदीद इल्हाद के नाम से भी ताबीर किया जाने लगा। अगरचे ये भी इल्हाद ही का है लेकिन उसको जदीद इल्हाद इन खसूसियात की वजह से कहा जाने लगा कि जो अभी आपकी खिदमत में बयान करना चाह रहा हूं। बाजों ने ये जो मॉडर्न एथीइज्म है, इस मॉडर्न की जो ये जो सिफत बन रही है, हम कह रहे हैं जदीद इल्हाद, इल्हाद की सिफत बना रहे हैं, बाज कहते हैं कि ना, मॉडर्न एथीइज्म से मुराद ये है कि इल्हाद जदीद दुनिया में, यानी आज जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म की जो एक हालत चल रही है और इसके अंदर जो है वो इंसान जिंदगी गुजार रहा है, इसके अंदर जो एथीइज्म पाया जाता है और इल्हाद पाया जाता है ये मुराद है जदीद इल्हाद से। लेकिन जो हम यहां पर मुराद लेना चाहते हैं वो ये नहीं है कि इल्हाद जदीद दुनिया के अंदर, मॉडर्न दुनिया के अंदर, ये माना मुराद नहीं ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इल्हाद क्या है, खुद जदीद सिफत के साथ मुत्तसिफ है, यानी आज के जो मुल्हदीन मौजूद हैं, एथिस्ट मौजूद हैं, वो बाज चीजों में पुराने एथिस्टों से फर्क करते हैं। वो क्या है, आप अगर एथिज्म का तारीखचा पढ़ें तो आपको एक वाजे तौर पर सिफत यह नजर आएगी कि पुराने जमाने में जो एथिस्ट होते थे, मुलहिद होते थे, वो हमेशा दिफा की हालत में रहते थे, यानी जब वो खुदा के वजूद का इनकार कर देते थे तो फलसफी जो मुकाबले में होते थे वो उनको दलाइल देते थे कि खुदा है, और वो फिर क्या करते थे, अपने इस इल्हाद के मकसद के लिए उनके दलाइल को रद्द करते थे, यानी दिफा की हालत में आ जाते थे और इल्हाद का दिफा करते थे आकर, यानी इनफ़िआली हालत थी, दिफा की हालत में रहते थे। लेकिन आज जो एथीइज्म मौजूद है जिसको हमने मॉडर्न एथीइज्म से ताबीर किया है, यह तहाजुमी हालत में है, तहाजुम है, यह डिफेंस के में हालत में नहीं है बल्कि तहाजुम के ऑफेंस के है, ऑफेंस कहते हैं तहाजुम को, ऑफेंस, ऑफेंसिव हालत में है, यह तहाजुम कर रहा है। ये एक ये फर्क है कि जो इनके अंदर पाया जाता है। मसलन पुराना जो मुल्हिद था वो कहता था कि तुम जो दलायल दे रहे हो खुदा के लिए, जो अकली दलायल तुम पेश कर रहे हो, मसलन अरस्तू ने जो पेश किए थे, अफलातून ने जो पेश किए थे, या बाद वाले जो फलासफर थे उन्होंने पेश किए थे, तो ये मुल्हिद कहते थे कि आपके ये दलायल हमें काने नहीं कर रहे हैं, आपके ये दलायल जो है वो ताम नहीं है, इनके अंदर जो है वो नक्स पाया जाता है, ये आपके मतलूब को साबित नहीं करते, वो फकत यहां तक रहते थे। लेकिन आज का जो एथीइज्म है, मॉडर्न एथीइज्म है, ये दलायल पेश करते हैं इल्हाद के ऊपर, दलायल लेकर आते हैं, और पढ़ेंगे उन दलायल को कि जो ये इल्हाद को साबित करने के लिए लेकर आते हैं। बस फर्क है, वो खुदा के ऊपर पेश किए गए दलीलों को रद्द करते थे और मुल्हिद होते थे। ये ना सिर्फ ये कि दलायल को रद्द करते हैं जो खुदा के इस बात के लिए बयान किए जाते हैं, ये अपने भी दलायल रखते हैं कि खुदा नहीं है, दुरुस्त है? बस ये एक फर्क था। दूसरा जो बुनियादी फर्क पाया जाता है मॉडर्न एथीइज्म और पहले वाले एथीइज्म के अंदर, वो है कि मॉडर्न एथीइज्म के अंदर साइंस से इस्तेफादा किया जा रहा है, जदीद इल्म से, उलूम से इस्तेफादा किया जा रहा है इल्हाद को तरवीज देने के लिए। पहले जो मुल्हिद था वो अकली दलाइल को रद्द करने के जरिए इल्हाद तक पहुंचता था, यानी जो फलसफियों ने दलाल दिए होते थे उसको रद्द कर देता था और काने नहीं होता था, बस वो मुल्हिद बन जाता था कि चूंकि दलाइल नहीं है आप लोगों के पास, बस खुदा नहीं है। लेकिन आज का जो मुल्हिद है वो जदीद साइंस से इस्तेफादा करके साबित करता है आज के इंसान के लिए कि खुदा नहीं है। बस दूसरा जो बुनियादी फर्क है वो है कि ये साइंस से इस्तेफादा कर रहे हैं। तीसरा जो बुनियादी फर्क है कि पहले जब इल्हाद पाया जाता था, अगर कोई मुल्हिद बन जाता तो वो एक तहरीक की हालत नहीं बनाता था, मतलब एक नहजत बना दे, तहरीक बना दे, एक तंजीम बना के मतलब काम शुरू कर दे और एथीइज्म का जो है वो तबलीग करना शुरू कर दे, मुख्तलिफ हरबों से इस्तेफादा करके मुआशरे को मुल्हिद बनाने का जो है वो तरीकाकार सोचने लग जाए और मुल्हिद बनाना शुरू कर दे। पहले ये नहीं था, एक फलसफी ने दलाइल दिए, दूसरा आकर उसमें तहकीक करता है, दलाइल को रद्द करके कहता है नहीं समझ में आई, लिहाजा आपके दलाइल चूंकि ताम नहीं है, बस मैं मुल्हिद हूं, खुदा साबित नहीं होता, वो अपने घर जाके बैठ जाता है, या मतलब कोई आ जाता उसके पास तो गपशप हो जाती, मिसाल के तौर पर यह छोटी मोटी किताब लिख देता इल्हाद को बयान करने के लिए, दलाइल को रद्द करने के लिए, तो ये इस हद तक था, यानी महदूद लेवल पर जो है ये काम हो रहा होता था। लेकिन आज के जमाने में इल्हाद अपने पूरे वसाइल से इस्तेफादा करके बशरियत और इंसान को जो है वो गुमराह करने के पीछे है। आप देखें, फिल्मों से इस्तेफादा किया जा रहा है, सोशल मीडिया से इस्तेफादा किया जा रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उससे मुकम्मल तौर पे इस्तेफादा हो रहा है, हत्ता सियासत से इस्तेफादा हो रहा है इल्हाद को प्रमोट करने के लिए। ये ज़राए इब्लाग जो हैं वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं इस मॉडर्न एथीइज्म ने। एक और जो बुनियादी ये हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और वो इंतहाई खतरनाक है, जरूरी भी था लेकिन खतरनाक किस माना में है कि गलत इस्तेफादा कर रहे हैं, वो ये कि एक तहरीक चली मगरिब जमीन के अंदर कि उलूम को किसी खास तबके के लिए मखसूस नहीं होना चाहिए, बल्कि उलूम को इतना ज्यादा सादा कर दिया जाए कि आम इंसान भी अगर समझना चाहे उस इल्म को तो वो समझ सके। आज बकायदा पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी के अंदर बकायदा उलूम को किस तरीके से सादा करके बयान करना है अवाम के लिए, उसके बकायदा लेक्चर्स होते हैं, उनके बकायदा मुख्तलिफ क्रेडिट्स जो है वो मुहैया होते हैं, वो पढ़ के इंसान जो है वो उसके अंदर महारत हासिल होता है, हासिल करता है। ये उमूमी साजी और सादा साजी का काम जो है वो शुरू किया
تاکہ علوم کو عام کیا جائے معاشرے میں اور شعور دیا جائے. یہ جو ماڈرن ایتھیزم کے قائل ہیں, یہ جو ایتھیسٹ ہیں ماڈرن دنیا کے اندر, انہوں نے اسی حربے کا استعمال کیا. فزکس کو جب عام کرنا شروع کیا, بچوں کے حد کے لیول تک لانا شروع کیا, تو انہوں نے اسی سائنس سے بچوں کے ذہن میں ڈالنا شروع کیا کہ خدا کی ضرورت نہیں ہے, خدا ہے ہی نہیں ہے. اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے, جو کہ پہلے بھی میں نے اپنے کسی درس میں جو وہ اشارہ کیا ہے آ کر, کہ ہم یونیورسٹیوں کے اندر, ہم کالجز کے اندر, سکولز کے اندر سائنس پڑھنے کے لیے بچوں کو بھیجتے ہیں اور کبھی توجہ اس بات کی طرف نہیں کی ہے کہ آج جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, بعض ایتھیسٹ ایسے ہیں جو ہر کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہر دنیا کے یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اگرچہ تعداد ان کی انتہائی درجہ کم ہے, لیکن بعض جگہ وہ مؤثر ہیں, بعض جگہ وہ بہت زیادہ متحرک ہیں, کام کر رہے ہیں وہ, اور ایک خاص انداز میں ان کے ذہن میں یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ سائنس ہے, سائنس کے ہوتے ہوئے خدا کی ضرورت نہیں ہے. تو بس ایک بنیادی جو حربہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ اس تحریک سے استفادہ کر رہے ہیں یہ ماڈرن ایتھیزم والے. بعض ان کے عقائد ہیں مثال کے طور پہ جو یہ شعار رکھتے ہیں, وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم بچپن ہی سے دینا شروع کر دیں, یہ سوء استفادہ ہے ان سے, غلط کام ہے. بچوں کے ذہن میں دینی تعلیم نہیں ڈالنی چاہیے, آزاد چھوڑو اس کو, یہ ان کا شعار ہے. بنیادی ترین جو افراد ہیں اس جدید الحاد کے نمائندے آپ سمجھ لیں, ریچرڈ ڈاکنز ہے, ڈینیل ڈینٹ ہے, سیم ہیریس ہے, اسٹیفن ہاکنگ ہے, بڑے بڑے نام ہیں دنیا. اسٹیفن ہاکنگ وہ شخص ہے کہ پوری دنیا کے فزکس دان اس کی تھیوریاں پڑھ کے فزکس دان بنتے ہیں, ابھی تازہ فوت ہوئے ہیں, آپ دیکھا ہوگا ان کو. تو یہ ان کے بنیادی فرق ہیں, اس کے علاوہ بعض فرق موجود ہیں کہ اہم ترین چیزیں جو آپ کی خدمت میں عرض کی تھی وہ یہ تھا. یہ ایک مطلب تھا کہ جدید الحاد کسے کہتے ہیں اور یہ کیا بعض اپنے فرق رکھتے ہیں پہلے الحاد سے. یہ جو جدید الحاد ہے یہ مختلف علوم سے استفادہ کرتا ہے اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے. وہ کون سے اہم علوم ہیں جن سے یہ استفادہ کرتے ہیں؟ ایک ہے فزکس. فزکس کے ذریعے یہ الحاد کی فکر کو پھیلاتے ہیں, اور فزکس اپنے دونوں جو ہے وہ شعبوں کے اندر, چاہے وہ کازمک فزکس ہو یا کازمک, آپ پڑھیں اس کو, یا کازمک میں تلفظ کیا جاتا ہے اس کو, کازمک فزکس ہے, اور دوسرا کوانٹم فزکس ہے جو آج رائج ہے. کوانٹم فزکس جو ہے مشہور ترین جو ہے وہ آج جتنے بھی سائنسدان آ رہے ہیں وہ اسی کے اوپر ہی جو ہے وہ اپنی تھیوریز جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. ان دونوں شعبوں کے ساتھ جو فزکس کے ہیں ان سے استفادہ کر کے یہ الحاد کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں, کہ مختصر سا ان کی طرف اشارہ ہوگا کہ کون سے نظریے کو یہ استفادہ کر رہے ہیں الحاد کو بیان کرنے کے لیے. دوسرا جو علم جس کے ذریعے یہ الحاد کو جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں وہ بیالوجی. اور مخصوصاً ایولوشنری بیالوجی جو ہے, یعنی ڈارون کے ساتھ جو مربوط ہے وہ جو شعبہ ہے اس طرف سے, ادھر سے آ کر یہ کیا ہے بیالوجی کے اس شعبے سے استفادہ کرتے ہیں جو ہے وہ الحاد کو بیان کرتے ہیں اور ڈارونزم کی تھیوری کو بیان کرتے ہیں, اور ڈارونزم کے ذریعے جو ہے یہ خدا کے وجود کا انکار लेकर आते हैं। तीसरा जो अहम तरीन एक बल्कि ये मजमुआ है एक इल्म का जिसको कहते हैं कॉग्नेटिव साइंसेज। कॉग्नेटिव साइंसेज मुख्तलिफ उलूम का मजमुआ है, इनके जरिए ये इल्हाद को बयान कर रहे हैं। कौन से वो उलूम है कि जो इनके अंदर पाए जाते हैं? साइकोलॉजी है कॉग्नेटिव साइंसेज के अंदर, साइकोलॉजी है मसलन, और पैरासाइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी की एक है पैरासाइकोलॉजी, और न्यूरोलॉजी है असब शनासी जिसे कहते हैं। ये जो मुख्तलिफ उलूम हैं इनके जरिए वो आकर अपने इल्हादी नजरियात को जवान के जहन में डालते हैं। और आप ईमान से बताएं कि आप यूनिवर्सिटीज में जाके इनमें से किस इल्म को नहीं पढ़ते? हाँ, यानी ये उलूम ऐसा नहीं है कि ये इल्हादी उलूम है ना, ये ना इल्हादी है ना तौहीदी है, लेकिन अपने इस्तेफादे के लिए ये इनसे गलत काम ले रहे हैं, गलत अहदाफ को इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं के जरिए। फिजिक्स, बियोलॉजी, कॉग्निटिव साइंसेज, इनसे जो है वो इस्तेफादा कर रहे हैं। और आज जो आप देख लें कि हमारा जो भी जवान है यूनिवर्सिटीज में जाके जब ये उलूम पढ़ेगा जाके, तो हतमन उसके जहन में ये सवालात आते हैं खुदा के बारे में, और हमारी जो है जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है इसके अंदर आके कि इन उलूम के अंदर जो है वो काम करें, और इन्होंने जो चैलेंज खड़े किए हैं इन उलूम से इस्तेफादा करके दीन के मुकाबले में, उसका दिफा करें और रद्द करें उसको आकर। और उसमें फलसफा बुनियादी तरीन एक इल्म है कि जो मदद करता है कि इनको जवाब दिया जाए। ये उलूम तो हैं कि चूंकि जहरी बात है यहां से थ्योरियां निकलकर दीन के खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, इनको जानना जरूरी है, लेकिन जो असल रद्द करना है आपने, जो हरबा है आपके पास रद्द करने का, वो फलसफा है। और इन्हीं उलूम के जरिए फलसफे को भी रद्द करते हैं। हत्ता स्टीफन हॉकिंग ने जो है अपनी किताब में लिखा है, कहीं अगर मुझे दोबारा मिल गया तो मैं लेके आऊंगा, उसने कहा फलसफा मर चुका है यार, फलसफे का जमाना खत्म। इंतहाई अहम चीजें हैं कि आप दोस्तों के अंदर जो है ये मोटिवेशन जो है वो होना चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए आपको कि इन उलूम के अंदर आप अच्छे तरीके से जो थ्योरियां इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं और जो चैलेंज के तौर पर दीन के सामने पेश की जाती हैं उनको अच्छे तरीके से हल करें, खुसूसन वो जवान को जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, थ्योरियों को अच्छे तरीके से जो है वो हल करें, और फिर मुतलका जो अफराद हैं उनकी तरफ रुजू करें, और कभी इनके इल्हादी जो तबलीगात हैं उनका उनकी तासीर ना लें, और पहले आकर हल करें इन मसाइल को। और आज जो दीन की जरूरत है और आज जो फलसफे की जरूरत है वो पहली दुनिया से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। अगर आज का तालिबे इल्म बैठकर ये सोचता है कि मैं फलसफा ना पढ़ूं तो दीन का दिफा कर लूंगा, खाम ख्याली है उसकी। यानी औजबुल वाजिबात में से है इस वक्त फलसफा। अगर कोई दीन को एक आप यूं कह ले मुआशरे के लेवल पे और अपने जवानों के लिए जो है वो बयान करना चाहता है और दीन का दिफा करना चाहता है, और आप अगर मसलन पढ़े लिखे अफराद के अंदर जाके लेक्चर देना चाहते हैं, दीन के बुनियादी मफाहिम को क्लियर उनके लिए करना चाहते हैं, तो सबसे बड़े सवालात इन्हीं से वो लेकर आएंगे कि बाजों की तरफ इशारा होगा और मुख्तसर जो वक्त होगा हमारा उसमें जवाब देंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे काने को निंदा जवाब हो जाए उसमें। तो बहरहाल एक तहरीक चलने की जरूरत है। उर्दू जबान के अंदर भी एथीइज्म जो है वो और मॉडर्न एथीइज्म जो है वो ज्यादा प्रमोट हो रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं, फेसबुक के ऊपर पेजेस बनाए हुए हैं जिसके जरिए जवानों को खराब किया जा रहा है। तो जो फलसफे के शौकीन हैं और महारत हासिल करना चाहते हैं, दीन का दिफा करना चाहते हैं, तो वो उनसे आशनाई हासिल करके उनके खिलाफ जो है वो एक तहरीक चलाकर जो है वो कदम बढ़ाएं आगे, मिलकर मसलन चंद अफराद जो है वो काम करें, तब जाकर हम वो जो तखरीब करना चाहते हैं दीन के चेहरे को उनके मुकाबले में आकर एक बेहतरीन हम जवाब दे सकें। कि इंशाल्लाह आप दोस्तान जो है वो मेहनत करेंगे اور فقط سننے کی حد تک اکتفا نہیں کریں گے، جو مطالب بیان ہوں گے ان پہ سوچیں گے، محنت کریں گے، پڑھیں گے، مزید مطالب جو ہے وہ اکٹھے کر کے لائیں گے، تب جا کر یہ مسئلہ آپ آگے چل کے بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔